कहा जाता है मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमह वंदे परमानंद माधव। गीता ऐसी चीज है जिसे सुनकर कोई भी आदमी चलना भी सीख लेता, लांघना भी सीख लेता है, बोलना भी सीख लेता है, जिंदगी के हर पहलू को सुलझाना भी सीख लेता है। तो उसी के सिलसिले में समझो गॉडली विजडम को ही आगे लेते हुए हम आज के दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा अभी का विषय है मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस थ्रू गॉडली विजडम। जो ईश्वरीय ज्ञान है या बुद्धिमत्ता है या प्रज्ञा है, उसके आधार से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कैसे करें। आप सबको पता है दुनिया में डिवाइन विजडम बहुत सारी चीजों से हमें प्राप्त होती है, या महात्माएं जो है डिवाइन विजडम देके गए, शास्त्रों से शास्त्रों का विजडम हमें प्राप्त होता है, दुनियावी विजडम अनुभवों से डे टू डे लाइफ से हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये गॉडली विजडम क्या चीज है, कहां से प्राप्त होती है और इससे क्या लाभ है, और स्पेशली स्ट्रेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक शायरी बहुत अच्छी याद आती है, तनाव से हो गई दोस्ती इस कदर, तनाव से हो गई दोस्ती इस कदर, तनाव हो जाता है तनाव ना होने पर, तनाव हो जाता है तनाव ना होने पर। सच है ये। हम कहते हैं हमारी इंडिया सेक्युलर है, यहां कोई जात पात का भेद नहीं है, लेकिन सच में सेक्युलर या जात्यातीत भाव जिसको हम कहते हैं जाति से अतीत भाव, वो है तनाव स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए कोई जाति धर्म लिंग वर्ण भाषा देश कोई भेद नहीं है, सभी को स्ट्रेस होता है 3 साल से 100 साल के बूढ़े तक, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा। हमने सुना था बौद्धिज्म के टाइम पे बुद्ध ने कहा कि जिसके घर में मृत्यु नहीं हो उसके घर से कोई एक चीज लाना तब मैं कहूंगा कि तुम अमर हो सकते हो। लेकिन आजकल की दुनिया में अगर कहा जाए कि किसी के घर में तनाव नहीं है, ऐसे घर की पानी लेके आओ तो मैं तुमको अमर बना दूंगा, ऐसे हालात है। तो तनाव की सर्वव्यापकता हम जो देख रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर हम अभी आगे बढ़ेंगे। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी आज हमारे बीच आप सबकी बहुत जानी मानी और हमारी संस्था की बहुत प्रख्यात वक्ता, आज की कीनोट स्पीच देने हमारे बीच पधार रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी, सीनियर राजयोग टीचर माउंट आबू। मैं उनसे निवेदन करूंगी आज की स्टेज की शोभा बढ़ाए। और वेलकम दीदी। और मैं बुलाना चाहूंगी कि आज की गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर उमेश मुंद्रा, आईएएस सेक्रेटरी मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन भोपाल, कृपया मंच पर पधारिए। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है कि मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य बहन जी और भाई साहब की बैजेस और पुष्पों द्वारा स्वागत करें। सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाई बहने तो बहुत अच्छे ज्ञाता तो है ही, सभी के पास नॉलेज तो हर प्रकार की है, लेकिन बात इस विषय की है कि हम ज्ञान को या नॉलेज को अपना विजडम कैसे बनाएं, और दुनियावी विजडम और गॉडली विजडम में फर्क क्या है जिससे हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेस फ्री बना सके। हम आप सभी जानते हैं कि कि आजकल स्ट्रेस किस कदर बढ़ गई है और हर कोई स्ट्रेस से मुक्ति पाना चाहता है, स्ट्रेस फ्री लिविंग सभी की चाहना है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेस भी हमें अवेलेबल है। हम ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेस कराते हैं, लेकिन गॉडली विजडम से स्ट्रेस मैनेज करना, आई वेलकम मिस्टर ओमेश मुंद्रा जी। वो क्या नई चीज है उसके बारे में हम आज सुनेंगे, क्योंकि कल से जो बातें यहां पर हो रही है गॉडली विजडम को लेकर, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स सुनते हैं। जैसे देखिए कि एक पेन है, ये पेन कोई वजनदार नहीं है, मेरे हाथ में इसे पकड़ने से मेरे हाथों में या जोड़ों में कहां भी दर्द का अनुभव मुझे नहीं होगा, लेकिन अगर यही पेन मैं थोड़ी देर तक, आधा घंटा, एक घंटा, टू आवर्स, फोर आवर्स ऐसे ही पकड़ के रखूं तो क्या होगा? क्या होगा? आप सबको पता है कि धीरे धीरे यहां सब पुलिंगनेस फील होगा, दर्द फील होगा, मुझे स्ट्रेन होगा, ये सभी हम सब जानते हैं। क्या आधा घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा ये होने पर इस पेन का वजन बढ़ा? नहीं। फिर क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया? जो स्टार्टिंग में नहीं था वो क्यों हो गया? हाँ, इस चीज को ज्यादा देर तक मैंने पकड़ के रखा जो जरूरी नहीं था, है ना? इसी तरह जो चीजें हमारी जिंदगी में आती है और जाती है, और जिन चीजों को हम पकड़ के रखना चाहते हैं उनको छोड़ देते हैं, और जिनको पकड़ना नहीं चाहिए उनको पकड़ के रख लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हम जिंदगी में तनाव, तनाव से रिलेटेड डिसीज, उसे होने वाली प्रॉब्लम्स, उसे होने वाली संघर्ष जो है, वो सब कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स या इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये सभी फील करते हैं। वो लंबा सा एक बहुत लंबा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए गॉडली विजडम से हम इन सभी प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकाले? हो सकता है तो कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में ये गॉडली विजडम किस हद तक हमारे उपयोग साबित हो सकता है, इसके बारे में आप सभी तो जानते हैं। हमारे सामने आज कीनोट स्पीच देने उपस्थित हुए हैं हमारे आदरणीय उषा दीदी, जो इस संस्था से पिछले 50 वर्षों से जुड़े हैं और इंटरनेशनल स्पीकर हैं। आप तो उषा दीदी के नाम बहुत अच्छी तरह से सुने हुए हैं, मैं समझती हूँ सभा में कितने सुने हुए हैं उषा दीदी के नाम? अच्छा, और उषा दीदी को भी सुने होंगे कई चैनल्स में, टीवी पे तो सुने हैं। तो आज हम सबका सौभाग्य है हमारे सामने है, और आप बहुत अच्छे भगवद गीता के ऊपर भी बहुत अच्छी कोर्सेज कराते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर है उसके ऊपर भी, बहुत अच्छा आपका अध्ययन है उन विषयों पर भी, और देश विदेश में भी बहुत मैनेजमेंट कोर्सेज भी आप करा चुके हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज के विषय के ऊपर प्रकाश डालें।
ओम शांति। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे ब्राता उमेश मुंद्रा जी तथा ब्राता राकेश मेहता जी एवं हमारी प्यारी बहन वीणा जी, सभा में उपस्थित सभी महानुभव, बहुत सुंदर प्रथम सत्र भी रहा कि भगवद गीता और गॉडली विजडम के आधार पर वैल्यूज एंड एथिक्स पर आपने कई बातें हमारे आदरणीय ब्राता ब्रिजमोहन जी से भी सुना, और अभी का विषय भी बहुत सुंदर है। तनाव का अनुभव हर एक को है, कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं जिसको तनाव न हो, या उसका एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जो सब्जेक्ट है मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस, और एक होता है कि स्ट्रेस फ्री हो जाना, क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं कि मैनेजिंग स्ट्रेस या स्ट्रेस फ्री? मैनेजिंग स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जैसे वीणा जी कह रही थी कि आज ये हमने समझ लिया है कि तनाव के बिना जीवन नहीं, और इसीलिए शायद यही कहा कि मैनेजिंग स्ट्रेस यही सीख लेना चाहिए। क्यों स्ट्रेस मुक्त नहीं हो सकती, या वो जीवन अच्छी नहीं लगती है, क्या कहेंगे? स्ट्रेस मुक्त जीवन, स्ट्रेस फ्री जीवन अच्छी नहीं लगती है, पॉसिबल नहीं है? तो नहीं पॉसिबल है। आज किसी को अगर थोड़ा सा ये वेदर चेंज हुआ और सर्दी जुखाम बुखार हो जाए, तो क्या सर्दी जुखाम बुखार को लेकर जीना चाहेंगे, सोचेंगे कि इसके बिना जीवन नहीं, ये वातावरण का फल तो मिलता ही है, ये सोचेंगे, या तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई सर्दी जुखाम बुखार ठीक हो जाना चाहिए, क्या सोचेंगे? ठीक हो जाना चाहिए ना, उसको लेकर के जीना तो नहीं चाहते हैं ना, तो स्ट्रेस को लेकर जीना क्यों चाहते हैं? क्या समझ, क्यों यही समझते हैं कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है? अगर सर्दी जुखाम बुखार से तुरंत अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, उसको लेकर के जीना नहीं चाहते हैं, जबकि कई बार आयुर्वेदिक कहता है कि 3 दिन के बाद ये ठीक हो ही जाना है, फिर भी हम तुरंत और कुछ नहीं तो एक क्रोसिन भी ले लेंगे और मुक्त होना चाहते हैं, तो ये सर्दी जुखाम बुखार क्यों आता है? डॉक्टर के पास जाएंगे, सिंपल सी बात कहेगा वो कि सर्दी जुखाम बुखार का कारण है कि फिजिकल इम्यूनिटी कम है, और इसीलिए चेंज ऑफ वेदर वो वायरल अफेक्ट किया, इसीलिए और कुछ नहीं, वायरल है। और उसके बाद एक एडवाइस देता है 3 चीजों के लिए कि टेक प्रॉपर नरिशमेंट, जंक फूड नहीं खाओ, प्रॉपर नरिशमेंट जिससे ताकत मिले, ठीक से आराम करो, और कहेगा एक्सरसाइज करो। ये 3 चीज है तो शरीर की ताकत या इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस पावर बढ़ने लगेगा। ठीक इसी तरह ये स्ट्रेस माना क्या, कि स्ट्रेस माना ही जब हमारी मेंटल इम्यूनिटी या माइंड का जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम होने लगता है, तो हर छोटी मोटी बात, हर परिस्थिति माइंड को इफेक्ट करती है, जिसको ही नाम दिया तनाव। तो मेंटल इम्यूनिटी को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, माइंड पावर को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? मेंटल रेजिस्टेंस पावर को अगर बढ़ा लिया जाए, जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो कैसे भी एनवायरमेंट में वो चला जाए, बाहर का वायरस उसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस पावर इतना है वो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक इसी तरह हमारी मेंटल कैपेसिटीज जो है उसको जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, तो हर छोटी मोटी बात भी मन को प्रभावित कर देंगी, वहां तक कि कभी कभी तो किसी ने कुछ कह दिया और हमें महसूस हुआ ये उचित नहीं था, तो इतना माइंड अपसेट हो जाता है, इतना स्ट्रेस होने लगता है, इतना नेगेटिव थिंकिंग आरंभ हो जाता है, कि कितने दिनों तक वो बात लिंगर करती रहती है और उसका इफेक्ट हर एक बात के ऊपर आने लगता है, व्यवहार पर, कर्म पर, हमारी भाषा पर, हर बात में उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक इसी तरह ये स्ट्रेस जो है इसको खत्म करने के लिए कोई दवाई तो है नहीं कि मल्टीविटामिन खा लिया और माइंड की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ ये तीन चीज बहुत जरूरी है, प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अब मन के लिए नरिशमेंट क्या है? व्हाट इज द नरिशमेंट फॉर द माइंड? मन के लिए नरिशमेंट है आध्यात्मिक विचार, बहुत पौष्टिक भोजन है ये, बहुत पौष्टिक नरिशमेंट है। बहुत एक्यूरेट सब्जेक्ट रखा है कि मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस थ्रू गॉडली विजडम। लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट नहीं करना है, लेकिन स्ट्रेस फ्री होने के लिए भी ये गॉडली विजडम। आध्यात्मिकता वो खुराक है मन के लिए, इतना पौष्टिक खुराक है मन के लिए जो मन को शक्तिशाली बनाता है, भीतर से सशक्त बनाता है और अंदर से एक पावर देता है। ये आध्यात्मिकता आज की जीवन शैली में एक खूटती कड़ी है। इट इज द मिसिंग डायमेंशन फ्रॉम मॉडर्न लाइफस्टाइल, और इसीलिए व्यक्ति को स्ट्रेस होने लगा है। आज इस मंच के द्वारा हम आपको यही कहना चाहते हैं, प्रयोग करके देखिए। योग का दूसरा नाम है प्रयोग। प्रयोग करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि जीवन में एक्सपीरियंस तभी प्राप्त होता है जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट्स देयर इज नो एक्सपीरियंस। इसलिए प्रयोग करके देखे, अनुभव करके देखे, और अगर अच्छा महसूस हो कि कैसी भी सिचुएशन, हम ये नहीं कहेंगे कि तनाव आएगा ही नहीं, तनाव की दुनिया है जहां लोगों की माइंडसेट इतनी वीक हो गई है, मेंटालिटी इतनी वीक है, तो जरूर है वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगे, समस्याएं, परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, वो आएगी, लेकिन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल इट, अच्छी तरह से उसको पार कर सकेंगे। इसलिए आध्यात्मिकता, गॉडली विजडम हमें भीतर से वो टेक्निक की ओर इशारा करता है और उसको सुलझाने का एक सही डायरेक्शन देता है। महाभारत में अर्जुन की बात याद आती है। अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना नर्वस हो गया, उदास हो गया, दिल शिकस्त हो गया, हिम्मतहीन हो गया, स्ट्रेस में आ गया कि उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। और उस समय भगवान ने जब उसकी कायरता या ये स्ट्रेस की स्थिति, नर्वसनेस को देखा, तो उसको सबसे पहले कौन सा ज्ञान दिया? आध्यात्मिक ज्ञान ही दिया। जैसे पहले सत्र में आपने देखा, सोल कॉन्शियसनेस, दूसरे अध्याय में ही आत्मा का परिचय दिया, एंड हाउ टू बी सोल कॉन्शियस, ये विधि बताई गई। भावार्थ ये कि जीवन भी एक संघर्ष है जहां हर वक्त व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को तो हम पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास हो जाता, नर्वस हो जाता, दिल शिकस्त हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, और ऐसे समय में शायद वो भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना में यही कहता है, हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक? आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है अभी, मुझे ये संघर्ष नहीं करना है। ऐसे समय के लिए ही ये आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हमें बहुत मदद करता है उन परिस्थितियों को सहजता से पार करने के लिए। बिना तनाव में आए, बिना स्ट्रेस में, नर्वसनेस हुए, हम उस परिस्थिति को पार कर सके, वो शक्ति हमें भीतर से प्राप्त होने लगती है। इसलिए रेगुलरली, जैसे शरीर को नरिश करना आवश्यक है, ठीक इसी तरह रेगुलरली अपने माइंड को भी नरिश करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय कैसा है, परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी, समस्याएं बढ़ेगी या कम होंगी, तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेगी या कम होंगी। और ऐसे समय में अगर हम भी भीतर से स्ट्रेस में आ जाए तो उस परिस्थिति को पार कैसे करेंगे, पार नहीं कर पाएंगे, शिकार बन जाएंगे। और स्ट्रेस को लेकर के शिकार क्या होंगे, कोई ना कोई फिजिकल बीमारी आरंभ हो जाएंगी। इसीलिए डॉक्टर्स ने कहा 70-80% ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू साइकोसोमेटिक रीजंस, जो मन से आरंभ होते हैं 70-80%। तो शिकार नहीं बनना है हमें, अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से, हर पहलू को बहुत सुंदर तरीके से अगर मुझे चलाना है तो आध्यात्मिकता से अपने आप को नरिश करना रेगुलरली बहुत जरूरी है। इसलिए आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। उसके बाद रेस्ट, शरीर को तो रेस्ट दे देते हैं लेकिन मन को भी रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है। रात को सो जाते हैं, शरीर सोता है, मन तो घूमता रहता है, सबकॉन्शियस लेवल पर माइंड इज कंटिन्यूअसली फंक्शनिंग। इसलिए व्यक्ति सुबह उठने के बाद भी अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता है, क्योंकि माइंड ने तो सारी रात काम किया है। और इसीलिए मन को रिलैक्स करना जरूरी है। एंड फॉर दैट मेडिटेशन इज कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को 5वें अध्याय से ध्यान योग की बात आरंभ कर दी, ध्यान योग सिखाना शुरू कर दिया। माइंड को कैसे रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय आत्मा और परमात्मा, कर्म की बात सुनाई, और उसके बाद 5वां अध्याय, छठा अध्याय, 7वां अध्याय ध्यान योग की बातें सुनाई। मेडिटेशन, रिलैक्सिंग योर माइंड। और कितना मेडिटेशन करना चाहिए, और इसलिए आज देखते हैं कि विदेशों के अंदर मेडिटेशन सीखने का एक क्रेज हो गया है, हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है। भारत में भी साइकेट्रिस्ट के पास जब जाते हैं तो उसका पहला एडवाइस, पहली सलाह यही होती है, रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड। कोई टाइप का मेडिटेशन सीखिए आप, कोई टाइप का मेडिटेशन करिए जिससे आप माइंड को रिलैक्स कर सको। राजयोग हमें बहुत सुंदर सहज टेक्निक बताता है माइंड को रिलैक्स करने की। ये 3 दिन आप महसूस करेंगे, टेस्ट दिया है आपको अपनी लाइफ में, नेगेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले सारे सोर्सेज से आप दूर है। सुबह न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, टेलीविजन नहीं मिलेगा, है ना, सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन के सोर्सेज से आप दूर हैं। और सुबह सुबह ही क्या होता है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट से यू बिगिन योर डे, है ना, आध्यात्मिकता और मेडिटेशन मॉर्निंग में भी और बाद में भी, बीच बीच में सेशंस में भी आपको बीच बीच में मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई जाती है कि 3 मिनट भी अगर रिलैक्स कर दिया जाए तो भी कितना हम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर देते हैं। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। 3 दिन के अंदर आप देखेंगे द डिफरेंस इन योर ओन लाइफ ऑन योर ओन फेस। बहन जी बता रहे थे पिछले सत्र में, फेयर एंड लवली लगाए लेकिन स्माइल तो है ही नहीं, है ना। भावार्थ ये कि वो खुशी, वो आनंद, वो उमंग, उत्साह जो मन प्रसन्न होने पर प्राप्त होता है एक नेचुरल तरीके से, माइंड रिलैक्स है तो भीतर से वो प्रसन्नता प्राप्त होने लगती है। और उस प्रसन्न स्थिति में अगर डिसीशंस लेना हो तो सही निकलता है। स्ट्रेस में अगर डिसीशंस लेना हो तो क्या होगा, गलत डिसीशंस निकल जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत सुंदर कहीं पढ़ा, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, लेकिन किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस अवसर के द्वार खोल देती है और किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन। अब किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है मेरे लिए अवसर के द्वार खुले। इट शुड ओपन डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है और किसको ये पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। बहुत सुंदर वहां लिखा था, चैलेंजेस के वक्त समय बहुत कम होता है। इट इज लाइक एन एपरेचर व्हिच ओपन्स एंड क्लोजेस इमीडिएटली। चैलेंजेस के वक्त जो सही डिसीशन ले लेता है उसके लिए अवसर के द्वार खुल जाते हैं, और चैलेंजेस के वक्त जो गलत डिसीशन ले लेता है उसके लिए पछाड़ने वाला अनुभव होता है। और सही निर्णय और गलत निर्णय का आधार क्या, तो सही निर्णय का आधार है क्लियर फोकस, नो स्ट्रेस, प्रसन्न स्थिति मन की। उस समय जो व्यक्ति डिसीशन ले लेता है वही अवसर के द्वार खोलने के निमित्त बन जाता। और अगर अब चैलेंजेस के वक्त व्यक्ति कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, उदास है, नर्वस है, स्ट्रेस में है, उसको सूझता नहीं है, इसीलिए वो गलत निर्णय ले लेता है और फिर बाद में महसूस भी होता है लेकिन क्या करो उस समय बहुत स्ट्रेस था इसीलिए मैंने ये बात तो सोची नहीं, इसलिए गलत निर्णय हो गया। तो मेडिटेशन इनर कंफ्यूजन को क्लियर करता है, हमारा फोकस क्लियर करता है। और जब सुबह सुबह मेडिटेशन कर लेते हैं, फोकस क्लियर होता है, तो आप अपने जीवन के अंदर जो डिसीशन लेते हैं वो आपको सक्सेसफुल की ओर ले जाता है, सक्सेसफुल बना देता है, सशक्त बना देता है। कितना मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, इतना टाइम निकलेगा, मिलेगा इतना टाइम? क्यों मैंने कहा 20 मिनट, क्योंकि मेडिकल साइंस द्वारा यह प्रमाणित है कि एक व्यक्ति 5 मिनट बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा कर लेता है तो उसकी 2 घंटे की कार्यक्षमता जल जाती है। 5 मिनट का बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा 2 घंटे की कार्यक्षमता को जला देता है। ही कैन नॉट फोकस हिज माइंड। वो 2 घंटे में वो क्या करेगा, 10 लोगों को ढूंढेगा जिसके सामने अपनी बात को जस्टिफाई कर सकता है कि ये रोज ही ऐसा करता है इसलिए आज मुझे गुस्सा करना पड़ा। और जब उसको 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया, उसको पाठ पढ़ाया, जरूरी था, तब जाके थोड़ी रिलैक्स होता है अंदर से। और अगर वो 10 में से एक ने कह दिया, जो कई बार जानबूझ करके भी लोग कह देते हैं सहानुभूति दिखाते हुए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं था, क्या होता है फिर फ्लेयर अप हो जाते हैं। और सुबह सुबह अगर 20 मिनट किसी ने गुस्सा कर लिया तो 8 घंटे की कार्यक्षमता उसकी जल जाती है। और आप देखते हैं, कई बार महसूस भी करते हैं कि जीवन में कई दिन ऐसे होते हैं सुबह सुबह ऐसा गुस्सा आ जाता है और फिर सारा दिन कोई भी क्रिएटिव कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माइंड फोकस ही नहीं हो पाता है, इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा 20 मिनट मेडिटेशन सुबह में, 8 घंटे की बैटरी को चार्ज कर लो। बातें आएंगी, माइंड रिलैक्स होगा तो आप अच्छी तरह हैंडल कर सकेंगे। और शाम को फिर 20 मिनट नमः शाम के समय, फिर 20 मिनट ताकि रात को नींद अच्छी आए, वो बातें हैंगओवर ना हो, इसलिए वो बातें क्लियर हो जाए और फिर मेडिटेशन करके माइंड को रिलैक्स करके आप अच्छी नींद कर सको इसलिए। और तीसरा है एक्सरसाइज। माइंड के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस। पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, जो दिन भर में बीच बीच में करते रहना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग इतना नेचुरल हो गया है, पॉजिटिव थिंकिंग सोचने पर भी बहुत मुश्किल से आता है। इसलिए अगर सुबह इनपुट्स डाले होंगे गॉडली विजडम के, स्पिरिचुअल विजडम के, वो इनपुट्स अगर दिए होंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग हो सकेगा, एक्सरसाइज हो सकेगी। अगर इनपुट ही नहीं तो प्रोसेस नहीं और आउटपुट नहीं। जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस, वैसा आउटपुट। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का इनपुट अगर हो तो पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस चल सकेंगी। जैसे बहन जी का कह रहे थे, 2-3 घंटा तक अगर हाथ ऐसा खड़ा कर दो दर्द करने लगेगा। इसी तरह कोई व्यक्ति ने कभी एक्सरसाइज की ना हो, अचानक एक दिन हाथ पैर हिलाना चालू कर दे, या डॉक्टर हार्ट अटैक आया और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कह दिया देखो आपको जीना है, रोज सुबह आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, शाम को आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करनी पड़ेगी। अगर वो डॉक्टर को कहे डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, आई एम सो बिजी, सुबह सुबह ही तो कारोबार आरंभ होता है, सारा लोगों का फोन कॉल शुरू हो जाता है और शाम को भी देखेंगे टाइम मिलेगा तो करेंगे, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मरो, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। अगर तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं है तो नोबडी कैन हेल्प यू। गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अगर उसको जीना है तो सुबह आधा घंटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। थोड़ा रीशेड्यूलिंग करेगा, 2-4 दिन लोगों के फोन आएंगे, जैसे ही लोगों को पता चल जाता है ये टाइम से ये टाइम ये नहीं मिलेगा, वॉकिंग गया होगा, लोग एडजस्ट कर लेंगे या अर्ली कर लेंगे फोन या बाद में कर लेंगे, कोई कारोबार रुकती नहीं है। और इसी तरह शाम को भी टाइम मिलता है, पहले 2-4 दिन जैसे ब्रिस्क वॉकिंग करके आएगा तो हाथ पैर दर्द करेगा, लेकिन दर्द करता है करके छोड़ नहीं देगा। ठीक इसी तरह मन को भी इतनी नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत पड़ गई है कि पॉजिटिव थिंकिंग करना हो तो कॉन्शियसली वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्स। और उसके लिए जितनी आध्यात्मिक इनपुट्स होगी उसको बेस बना करके भी आप पॉजिटिव थिंकिंग या थॉट फॉर द डे जो होता है उसको लेकर के आप पॉजिटिव थिंकिंग, कई टेक्निक्स है। कई लोग कहते हैं सुबह तो स्पिरिचुअल इनपुट्स डालने का टाइम नहीं मिलता है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता। आधा घंटा नहीं मिलेगा स्पिरिचुअली अपने आप को नरिश करने के लिए? नहीं मिलेगा तो नोबडी कैन हेल्प यू। फिर स्ट्रेस हमेशा आपके जीवन में रहेगा ही, इट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। इनिशियली स्ट्रेस होगा, फिर हाइपर स्ट्रेस होगा, फिर नर्वस ब्रेकडाउन आएगा, फिर डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। प्रैक्टिकली ये सिचुएशन है, इसीलिए धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस करते करते मन को सशक्त बनाते जाओ। जैसे जैसे आदत पड़ती जाएंगी, जैसे एक्सरसाइज की आदत पड़ गई तो जिस दिन नहीं किया उस दिन अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की भी आदत पड़ जाएंगी, फिर नेगेटिव थिंकिंग कहां गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और इस तरह मन सशक्त हो गया तो कोई भी छोटी मोटी बातें स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए निमित्त नहीं बन सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह से गॉडली विजडम मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हमें बहुत हेल्प करती है परमानेंट स्ट्रेस फ्री होने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू।
थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय उषा दीदी जी का। बहुत अच्छी तरह से हाउ टू मैनेज एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, बहुत अच्छे विधान भी बताए। और यहाँ पर सवेरे जो 6:30 बजे से आप लोगों के लिए मेडिटेशन सेशन हो रहा है 2-3 दिन, आप जरूर उस सत्र का लाभ लेंगे। कहा जाता है एक बार माया ने ना अपने व्यवहार से, माया बहुत तंग होकर अपने पास जो स्टॉक्स था उसका क्लियरेंस शुरू कर दिया। माया के पास क्या क्या स्टॉक्स था? ईगो था, एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सभी माया के स्टॉक्स हैं। तो माया अपने सब कुछ, जैसे कि सेल्स रखते हैं, ऐसे माया ने भी अपना सेल्स रख दिया। तो माया के सभी चीजें फटाफट सोल्ड आउट, और लास्ट में एक चीज रह गई, उसका नाम क्या था जो माया ने बेचना नहीं चाहा? माया के पास शांति। वाओ, माया के पास जो रह गया वो था आलस्य, और माया उसे बेचना नहीं चाहती थी। मतलब आलस्य रहा तो और सब चीजें साथ ही साथ आ ही जाते। इसलिए एक सुभाषित कहता है, आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्र, मित्रस्य कुतो सुखम। मनुष्य जिंदगी के मेन गोल रखता है सुख से जीना, या सुख के लिए जीना, या सुखी जीवन। तो सुखी जीवन का आधार क्या है और सुखी जीवन क्यों नहीं बन पाता? हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आलस्य के कारण मनुष्य सुखी नहीं बन सकता। तो आप सबसे भी ये निवेदन है कि यहाँ पर हम कहते हैं अल्लाह का दरबार है, यहाँ जो भी कही जाती है आपको लगता है या जी यस आई हैव टू, मुझे करना चाहिए। लेकिन हम इसको कहेंगे यहाँ तो सभी जी जी ही किया जाता है, बाहर से गए, बाहर यहाँ से जैसे कि ज्ञान सरोवर के गेट से बाहर निकले तो वहां पर दूसरा मेला लगा हुआ है नाजी का। वहां जाते ही आप सोच में पड़ जाएंगे कि बहन जी ने जो कहा, दीदी जी ने जो कहा कि 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, कल कर लेंगे। बहुत सारे माउंट आबू गए हुए थे ना, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे निपट लेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। कई आप लोगों में से यहाँ बैठे हुए माउंट आबू आने के लिए भी ऐसे किए होंगे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। इसी तरह मेडिटेशन के लिए भी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ये है आलस्य जो हमें अपने से बाहर जाने के लिए माया नहीं देती। जैसे हमने सुना था सीता के 3 लक्ष्मण रेखाएं, ऐसे माया के भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं जिसे पार करने माया नहीं देती है। इसी तरह भाइयों और बहनों, हम ये लक्ष्य रखेंगे इस अल्लाह के दरबार से जब हम बाहर जाएंगे, यहाँ पर जो बातें कही गई है ये पत्थर की लकीर के समान हमारे मन के ऊपर इतने अच्छी तरह लिखी हुई हो जो हम इमीडिएटली उसको एक्शन में ला सके। आप सब मेरे से सहमत है जी? जरूर। अच्छा, थैंक यू। इसलिए मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उषा दीदी ने जो बातें बताई, उन सब चीजों को केवल सुनेंगे नहीं। कहते दो कान किस लिए है, एक से सुनने, एक से छोड़ने नहीं है। इसलिए इस बात को अमल में लाने का एक लक्ष्य हम यहां से बना के जाएंगे। इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित है हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर उमेश मुंद्रा जी, IAS सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन भोपाल। आप पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग के कमिश्नर हैं, और पहले आप कई स्थानों पर कलेक्टर रह चुके हैं और हमारे संस्था के बहुत समीप भी हैं। और मैं चाहूंगी कि आप अपने मन के उद्गार हमारे सामने प्रस्तुत करें।
आज के इस सत्र के चेयरपर्सन माननीय श्री मेहता जी, मुख्य वक्ता उषा बहन जी, संयोजक वीना बहन जी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, अभी प्रशासनिक जो तनाव प्रबंधन की बात उषा बहन जी ने विस्तार से बताई, निश्चित रूप से वह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, खास करके प्रशासकों के लिए। और जो राजयोग की बात आज सवेरे भी हमने अनुभव की और उसके माध्यम से तनावों से कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, मुक्ति पाई जा सकती है, ये एक अपने आप में अनूठी व्याख्या है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के सामने ज्यादा न बोलते हुए बताऊंगा। लगभग 3 वर्ष पूर्व मैं एक प्रशासनिक सत्र में यहां पर आया था और राजयोग के माध्यम से तनाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है और तनाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसका अनुभव मैंने पिछले 3 साल के प्रशासनिक अनुभव में पाया। मुझे जो इसके पूर्व मुख्य रूप से समस्या होती थी, आगंतुकों को जो मिलने आते थे काफी बड़ी संख्या में आते थे और अपनी अपनी समस्याओं को बार बार दोहराते थे। कई समस्याएं ऐसी होती थी जिनका निराकरण तत्काल नहीं किया जा सकता था और वे लोग असंतुष्ट चले जाते थे, उसके कारण काफी तनाव दिन भर रहता था। ये राजयोग का जो एक्सरसाइज है, योग की जो मुद्रा है, उसके माध्यम से मैंने इसको नियंत्रित किया और मैंने अनुभव किया कि जो तनाव मुझे अपने प्रशासनिक कार्य में होता था उससे काफी मुझे नियंत्रण और खुशी हुई। मतलब पहले मेरे को तनाव होता था मिलने में, मगर उसके बाद जब ये राजयोग के माध्यम से मैंने अपना थोड़ा सा माइंड को जनरलाइज किया तो मैंने अनुभव किया कि मैं लोगों की समस्याओं का निराकरण भी अच्छी तरह कर पा रहा हूं जो संभव है और मुझे तनाव भी नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमने यहां जो पिछले सत्र में और इस सत्र में अनुभव किया वह आप लोग भी अनुभव करेंगे और यदि आप इसको अपनाते हैं, अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा हेतु यहां से लेके जाएंगे और अपने भविष्य के जीवन के लिए एक अच्छी अनुभूति पाएंगे। मैं आभारी हूं आप लोगों ने मुझे यहां अवसर दिया अपनी बात कहने का। निश्चित रूप से इस प्रकार का जो ये आयोजन है वो हम प्रशासकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और मार्गदर्शक है और मैं आभार व्यक्त करता हूं संस्थान का कि ये एक अवसर दिया कि हम अपने कार्यशैली, जीवन स्तर और जीवन निर्वाह के योग्य हो सकें और अच्छा प्रशासन आम जनता के बीच में ला सकें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता उमेश मुंद्रा जी का, जो अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में राजयोग के द्वारा उनको जो हेल्प हुआ है उसका आप सबको भी जो अनुभव आपने सुना इंस्पिरेटिव रहा होगा। कहा जाता है योग माना ही समत्वम योगमुच्यते, कीपिंग द बैलेंस इज योगा। जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है उसके बीच में जो समत्व या बैलेंस मेंटेन करना है उसको ही योग कहते हैं, जो राजयोग गीता में वर्णित है। कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कैसा योग करना है, कैसा जीवन बिताना है, योग करते हुए मतलब योगी होकर कर्म करो। आगे कहता है गीताचार्य कि योगः कर्मसु कौशलम्। जो हम कर्म करते हैं उसको सुकर्म कैसे बनाया जाए, ये योग की एक विधि है। इसलिए राजयोग माना अपने निजी जीवन को या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पब्लिक लाइफ या फैमिली लाइफ, सबको मिलाकर इसमें बैलेंस बनाकर रखते हुए अपने अंदर शांति समाधान बनाए रखें, उसको यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली है। केवल बैठकर 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा योग करना नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। इसलिए इसके बारे में आप जरूर पूरी तरह जानेंगे, पहचानेंगे और उस पर चलेंगे, ये हमारी आशा है। और आगे बढ़ते हुए अभी हमारे बीच आप सबने कल भी राता राकेश मेहता जी से सुना है अनुभव और बहुत अच्छी गॉडली विजडम के बारे में। और हमारे जो लेजिस्लेचर्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स है उनका जो बीच में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, जर्नलिज्म या मीडिया है, पब्लिक आम जनता है, उसके बीच में कल का उनका जो स्पीच इंस्पिरेशनल था वो सब हमने सुना भी है। आज के इस सत्र के आप चेयरपर्सन हैं मिस्टर राकेश मेहता जी, आप चीफ कमिश्नर इलेक्शन चीफ कमिश्नर दिल्ली एंड चंडीगढ़ है। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आज के चेयरपर्सन के इस पद से अपना वक्तव्य इस विषय के ऊपर हमारे सामने प्रस्तुत करें।
ओम शांति। आदरणीय उषा बहन, उमेश भाई, वीना बहन और नेपाल के भाइयों और बहनों और जो सभी देश के राज्यों से आए हुए प्रशासक भाइयों बहनों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस को आध्यात्मिकता से हैंडल कर सकते हैं। और पहला तो सवाल ये उठता है कि स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स फीलिंग स्ट्रेस। वन कैन अंडरस्टैंड अ बिजनेसमैन फीलिंग स्ट्रेस, उसका घाटा हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है और उसको और ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं अपने बिजनेस में, स्ट्रेस हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस कई कारण हो सकता है। एक तो ये होगा कि वर्क ही आपका इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको क्रियान्वित करने में आपको कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि ऊपर से आपको जो बॉस हैं आपके वो क्लैरिटी नहीं दे रहे आपको किस तरह से आपको कार्य करना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से ही अपने आप स्ट्रेस पैदा होता है। दूसरा ये कि सरकार का हर एक काम टाइम बाउंड होता है, उसमें कोई ना कोई टाइम दिया गया होता है और वो टाइमलीनेस से काम करने के लिए ये भी अपने आप एक स्ट्रेस पैदा होता है। तीसरा है कि आपको पता ही है कि सरकार में कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, सरकार में जॉइंट ऑपरेशन होता है, कोऑपरेटिव एफर्ट होता है, फाइल चलेगी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबके कोऑपरेशन की जरूरत है। तो कहीं बार उस चेन में एक आदमी भी अगर ठीक से काम ना कर रहा हो तो वो कोऑपरेशन आपको मिल नहीं पाता और इससे और स्ट्रेस बढ़ जाता है। और अगर आप चाहें भी उसका ट्रांसफर कराने तो करा नहीं सकते, तो आपको जो दिए गए लोग हैं उन्हीं से काम करवाने की कोशिश करनी पड़ती है, इससे भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। चौथा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कि कई विभाग हैं जिनके साथ कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका स्ट्रेस उससे बढ़ता है। छठा है फियर ऑफ ट्रांसफर कि कहीं मेरा ट्रांसफर ना हो जाए ऐसी जगह कि जहां मुझे बड़ी दिक्कतें हो। और सातवां है स्ट्रेस ऑफ फैमिली कि कहीं इधर से उधर की ट्रांसफर होता है, को स्ट्रेस फैमिली को भी स्ट्रेस बहुत होता है कि फैमिली का कैसे चलेगा कार्य। तो यही कई कारण है, पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जितने भी कार्य मैंने बताए हैं स्ट्रेस के, ये सब एक्सटर्नल रीजंस हैं स्ट्रेस के। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस होता है बाहर से हमारे अंदर जब तनाव या प्रेशर आता है तब ये स्ट्रेस पैदा होता है। और उषा बहन ने बहुत ही सुंदरता से बताया कि किस तरह से अगर हम हमारी स्थिति के अंदर की वीक हो तो स्ट्रेस हमें ज्यादा फील होता है, और अगर हमारी स्थिति अंदर की स्ट्रांग होगी तो स्ट्रेस फील नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस ही अपने आप अंदर घुस ही नहीं पाएगा हमारे अंदर। हमारी आत्मिक शक्ति अगर पावरफुल होगी तो वो स्ट्रेस अपने आप एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इसीलिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि उषा बहन ने बहुत अच्छी तरह से कि आत्मिक स्थिति बहुत जरूरी है। जैसे नरिशमेंट देने की बात कही थी, गॉडली आध्यात्मिक नरिशमेंट और मेडिटेशन का नरिशमेंट, माइंड को रेस्ट के लिए जरूरत है, और एक्सरसाइज की, पॉजिटिव थिंकिंग की। और मैं समझता हूँ ये सब चीजें तब आ सकती हैं जब हम साथ, मैं समझता हूँ साथ ऐसे मैं कहूँगा प्रिंसिपल्स या कहो या लॉज कहो, आध्यात्मिक लॉज कहो, जिसको हम अगर अवेयरनेस जिसकी हो उससे हम ये स्ट्रेस को हम हैंडल कर सकते हैं। तो पहला, जैसा ऑलरेडी कहा गया है, बिजमन भाई ने बताया, एज यू सो सो शैल यू रीप, दिस इज अ वेरी वेल नोन थिंग, कि जिससे हम कार्य करेंगे जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसी वृत्ति होगी और वैसे ही हमारे कर्म होंगे, और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये, डू अनटू अदर्स एज यू हैव अदर्स डू अनटू यू। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि लोग टाइम पे नहीं आते थे क्योंकि मीटिंग टाइम से नहीं शुरू होती थी, वो कहते थे भाई बॉस तो लेट ही शुरू करता है मीटिंग, तो मैं क्यों टाइम से जाऊं। तो जब मैंने, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में तो 100 मीटिंग होती थी, बहुत मतलब हंड्रेड ऑफ मीटिंग्स वर देयर, एंड आई डिसाइडेड आई विल होल्ड माई मीटिंग ऑन टाइम एंड एंड माई मीटिंग ऑन टाइम, बट आई नेवर टोल्ड एनीबडी टू कम ऑन टाइम। किसी को मैंने नहीं बोला कि आप टाइम से आओ। तो सब अपने आप जब उनको देखा कि ये तो एकदम टाइम से शुरू कर रहे हैं और टाइम से खत्म कर रहे हैं, वो अपने आप ही टाइम से आने लगे, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि मेरे टाइम की कदर है। और वही बात, डू वॉन्ट टू अदर्स एज यू वॉन्ट अदर्स टू डू अन टू यू, सो एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी स्मूथली। तीसरी बात यह है कि एक हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस तरह से शांति, प्रेम और खुशी को और बढ़ा सकते हैं अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में। ये एक मूल हमें एक प्रिंसिपल अपने सामने रखना चाहिए। इससे हमें कोई नेगेटिव कार्य करने में एक प्रोटेक्शन मिलती है कि हमारे मन में जो कॉन्शियंस है वो एकदम इमीडिएटली हमें वार्न करेगा कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना तो शांति बढ़ेगी और ना प्रेम बढ़ेगा और ना किसी की खुशी बढ़ेगी। चौथा ये कि चेंज बिगिंस विद इन वन सेल्फ। जैसे महात्मा गांधी ने बड़ा फेमस कोट है ना, दैट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड, विच इज नाउ बींग कोटेड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फैक्ट। तो ये है कि ये चेंज जो है हमें अगर अपने से शुरू करेंगे तो उसका वाइब्रेशन चारों तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली फैलता है। तो इसका हमें एक एहसास होना चाहिए, एक कन्विक्शन होना चाहिए कि हम किस तरह से चेंज को और बढ़ा सकते हैं। चौथा जो उषा बहन ने कहा, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेट में रहने से हम कभी कोई गलत फैसला नहीं करते, क्योंकि एक डिटैच तरीके से अगर कोई समस्या का सामना करते हैं तो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों हमारे सामने आ जाते हैं। और अगर आप मेडिटेशन अगर करेंगे तो उसकी समस्या का हल अपने आप सामने आ जाएगा। एक उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ एक BRT बनी थी, बस रैपिड ट्रांसिट, जो दिल्ली है उनको पता होगा, उसमें कार वालों की स्पीड स्लो हो गई, बस की स्पीड तेज हो गई, तो कार वाले बड़ा नाराज हुए। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने एक पेपर लिखा, 2007 की बात है, इलेक्शन आने वाले थे, तो उन्होंने ये लिखा कि भाई ये चीफ सेक्रेटरी तो चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन हरवा देगा और इसका पहला काम करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर इसका ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि इसने ऐसे गंदे गंदे प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया पढ़ के कि देखो एक एडिटर इस तरह से लिख रहा है, मुझसे पूछा तक नहीं कि भाई आपकी क्या राय है इसमें, आपको क्या बोलना है। तो मैंने कहा कि मैं इसके खिलाफ एक डिफेमेशन केस करने वाला हूं। पर फिर मैंने अपनी टीचर से, जो आध्यात्मिक टीचर है, उनसे राय ली, उन्होंने कहा नहीं तुम पहले सोच लो इसमें क्या रास्ता निकलेगा। तो मेडिटेशन में जो मुझे मैसेज आया कि इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह हुई कि 10 दिन के बाद एक NDTV ने एक सर्वे कराया जिसमें यह निकला कि 60% ऑफ द पीपल हु वर ट्रैवलिंग ऑन दैट रूट वर एक्चुअली इन फेवर ऑफ द BRT बिकॉज जो बस वाले थे उनका आधा घंटा टाइम बच गया। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे जो काम में जाते थे कहते भाई हमारा तो आधा घंटा टाइम बढ़ गया और इसलिए क्योंकि बस की स्पीड बढ़ गई है। तो इट टर्न आउट टू बी द राइट डिसीजन। हैड आई फाइल्ड केस वो केस अभी तक चल रहा होता 10 साल के बाद भी उसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकलता। तो इसलिए सोल कॉन्शियस स्टेज में आप जाकर कोई भी समस्या को सामने रख के उसको देखेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों सामने नजर आएगी और फिर जो फैसला आप लेंगे वो हर बार आई कैन टेल यू 100% करेक्ट डिसीजन होगा। सिक्स्थ है कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ हैविंग। बिकॉज वट एवर पोजिशन मे बी वी हैविंग, वट एवर मे बी वी चैलेंजेस मे फेस, हैप्पीनेस यू हैव टू रियली एक्सपीरियंस एज अ स्टेट ऑफ बीइंग। एंड वट कैन यू, वट काइंड ऑफ वाइब्रेशन आर यू सेंडिंग टू द एनवायरमेंट अराउंड यू, एंड दैट विल मेक अस ऑल इन अ वे हम्बल एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट अराउंड अस। सातवीं बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि डिटैच जज ऑब्जर्वेशन इज अ गुड जजमेंट, कि जो भी चीज आपको समस्या सामने आएगी उसको आपको डिटैच तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए और उससे जो जजमेंट निकलेगा वो एकदम सही जजमेंट होगा। जैसे उषा बहन ने पहले भी कहा कि गुस्से में अगर कोई फैसला करते हैं तो वो कभी सही हो ही नहीं सकता, उसमें कभी कोई आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बेसिकली वर्क स्ट्रेस को अगर मैनेज करना है तो हमें अपने अंदर की स्थिति को और सुदृढ़ और सशक्त बनाना है और वो हमें आध्यात्मिकता से, मेडिटेशन से और पॉजिटिव थिंकिंग से ही मिल सकती है। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको एक दो दे ही दिए, एक आध यही दे दूंगा कि एक हमें सिविक सेंटर बनाना था, हमारा एक बिग टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, इट इज 32 फ्लोर्स, इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली एंड द मोस्ट मॉडर्न। तो उसमें 12 एकड़ की जमीन थी, उसमें बहुत एंक्रोचमेंट्स थे, तमाम रिक्शे वाले और लोगों ने सब अंदर बैठे हुए थे, दुकानों ने बनी हुई थी। तो उसमें मेरी एक ही चॉइस थी, या तो मैं बुलडोजर चला के उनको खत्म कर देता और या मैं उनको सहानुभूति से उनको एक आत्मिक शक्ति देकर उनको कोऑपरेशन लेके उनको शिफ्ट कर सकता था। और मैंने ये एनालाइज किया कि अगर मैं बुलडोजर चला के करूंगा तो कुछ लोग जाके कोर्ट में स्टे ले आएंगे और वो प्रोजेक्ट अगले 10 साल तक स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने उनको सबको बुलाया धीरे धीरे करके, अलग अलग बुला के उनको समझाया कि ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है और हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, आपकी क्या समस्याएं हैं। और 6 महीने में वो सब अपने आप उठ के चले गए और उनका सब रिहेबिलिटेशन भी हो गया और हमारा प्रोजेक्ट भी 5 साल में खड़ा हो गया और एकदम बन गया। और तो इसलिए थोड़ी सी अगर नया तरीका अपनाने की अगर सोच करने की जरूरत है, मैं समझता हूं उसमें आध्यात्मिक शक्ति बहुत काम में आ सकती है। और एक हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगाया था, उसमें भी लोगों का बहुत रोष था, पर वो बन गया और अभी भी वो सक्सेसफुली चालू हो रहा है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि हम अगर अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं तो जितनी भी हमें टेंशन है उसको हैंडल करने में हमें बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगी। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ऐसी मान्यता है कि ये जो भी आध्यात्मिकता है, हर कोई सोचता है कि रिटायर्ड होने के बाद ये सब हम अपनाएंगे, फ्री रहेंगे तभी। लेकिन अभी राकेश भाई साहब के वक्तव्य के बाद आप सबको अनुभव हुआ होगा कि प्रोफेशनल लाइफ में
जब वो हाईएस्ट पोस्ट पर थे, दिल्ली गवर्नमेंट के सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी, तभी इन्होंने ये जो राजयोग शिक्षा अपने जीवन में अपनाई, जिसके कारण आम जनता को, बहुत सारे लोगों का यूज हुआ और उनके खुद के लाइफ में भी बैलेंसिंग रहा। और आप उनको देखते हुए पहचान सकते हो, ब्लिसफुल है, साइलेंस्ड है देखने में, और आपको लगता होगा कि इतनी हाईएस्ट पोस्ट विदाउट इगोइस्टिक पर्सनालिटी कैसे हैंडल की होगी, क्योंकि लोग समझते हैं अगर थोड़ा भी हम इगोइस्टिक नहीं रहेंगे तो सामने वाले हमें बहुत नरम समझेंगे, पेशेंस कई बार हमारी वीकनेस बन जाती है। ऐसे नहीं है, इसको वैल्यूज को डिवाइन वैल्यूज कहते हैं। डिवाइन वैल्यूज कभी कमजोर नहीं हो सकते। इसका एक हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है हमारे राकेश भाई जी, जो आप सबने उनसे सुना तो शायद प्रेरणाएं भी ली होगी। तो मुझे एक छोटी सी शायरी यहां पर कहना उचित मैं समझूंगी कि फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम फूलों के बाग में, आग को भी बदल देंगे हम फूलों के बाग में। वो कैसे होगा? अगर हम सही तरीके से राजयोग प्रैक्टिस करें और टाइम टू टाइम उसको अपनाएं और यूज करें, तभी हम ये बैलेंस रख सकते हैं। नहीं तो हम, आप सबको पता है कि हम बहुत सारी योगा सीखे हैं, यहां बैठे हुए भाई बहन भी बहुत सारी योगा, आजकल दुनिया, हम जब 21st सेंचुरी शुरू हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में एडिटोरियल्स लिखा, ये लिखा, वो लिखा, उसमें यही सोचा था कि शायद 21st सेंचुरी जो है पैनिक सेंचुरी हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो गए, योगा के बारे में सीखना, सोचना, उसके बारे में जानना, उसकी तरफ अपनी रुचि बढ़ाई। तो आजकल हर चैनल्स में 1, 2, 3 सेशन योगा के चलते रहते हैं, हर कोई योगा सीखने का रुचि रखता है, सीखता भी है, लेकिन आखिर रिजल्ट क्या निकलता है? हम सीखे तो है बहुत, प्राणायाम भी सीखे हैं, एक्सरसाइज भी सीखे हैं, वो योगा, ये योगा, वहां का योगा, यहां का योगा, सब हम जानते हैं, लेकिन फॉलो क्या कर रहे हैं? तो बाद में उषा दीदी ने जो कहा कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन फुर्सत नहीं है। लेकिन हम अपने दिल में एक बात लिख ले कि ये जो 24 घंटे है ना, ये 25 घंटे कभी बनने वाले नहीं है, ये 24 ही रहेंगे। तो इन 24 घंटे में ही हमें प्लान करना है कि खुद के लिए मुझे क्या करना है, कितना समय निकालना है। इसलिए इस पुण्य भूमि पे आप पधारे हो, यहां पर एक इच्छा शक्ति या दृढ़ता अपने मन के अंदर बना के जाएंगे कि जरूर हम अपने जिंदगी का पार्ट बना देंगे राजयोग। जैसे सवेरे उठते ही हम अपने कुछ डेली रूटीन करना जरूरी समझते हैं, इसी तरह योगा भी एक जरूरी चीज समझे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दे। तो मैं समझती हूँ कोई प्रॉब्लम हमारे सामने होते हुए भी हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से इजीली हैंडल कर सकेंगे। इसलिए मैनेजिंग, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत आसान है, वो तो हो ही सकता है हमारे से, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? किसके पास स्ट्रेस है उसी को स्ट्रेस मैनेज करना है। और हम अगर मन नहीं बनाएंगे तो भगवान के कहने पर भी कुछ होने वाला नहीं है, खुद को ही मन बनाना है। और केवल स्ट्रेस मैनेज ही नहीं करना है, लेकिन स्ट्रेस फ्री लिविंग इज ऑल्सो पॉसिबल। कल आपने हमारी दादी जी को देखा, बड़ी दादी जी जो 97 ईयर्स ओल्ड है, इतनी बड़ी संस्था चलाते हुए भी फुल स्ट्रेस फ्री है। उनसे पूछिए आप अपने दिन के 24 आवर्स में से खुद के लिए कितना समय बिताते हो? बहुत कम से कम समय सोते हैं, कम से कम समय, फिर भी इतनी बड़ी संस्था चलाते हुए कोई स्ट्रेस उनके पास नहीं है। कैसे? बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। कहते हैं मेडिटेशन, माना लोग दुनिया में सोचते कि रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन ओनली फॉर नॉट रिलैक्सेशन, इट इज ऑल्सो फॉर रिचार्जिंग सेल्फ, खुद को रिचार्ज करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। इसलिए इस शक्तिशाली जीवन शैली को अपनाएं ताकि हम अपने जिंदगी से दूसरों को भी प्रेरणादायी बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सभी सवेरे से लेके, मैं समझती हूँ 9:30 से हम सुनते आ रहे हैं, सुनते सुनते थक तो नहीं गए सभी? नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स को सुनाने की आदत ज्यादा होती है और सुनने की कम। तो यहां पर तो इतनी सारी बातें सुनाई जा रही है, तो ओवरलोड तो नहीं हो गया कहीं? क्या समझते हैं, क्या ओपिनियन है आप सबका? एक्सेस तो नहीं हुआ ना? थैंक यू। इसलिए हम चाहते हैं
कि यहां बैठे हुए आपके चेहरों पे जो मुस्कान है, जो आप फ्री है, रिलैक्स्ड है, ऐसे अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में भी ऐसे रहेंगे ना। वैसे ये भारत में हम हर कोई काम शुरू करने के पहले गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, विघ्न विनाशक उनकी प्रार्थना करते हैं। जब गणेश जी की वंदना करते हैं तो हम कहते हैं प्रसन्न वदनम ध्यायेत, गणेश जी को हम प्रसन्न वदन मानते हैं। लेकिन गणेश जी की आराधना, पूजना, वंदना करने वाले हमारा वदन कैसा है, हमारा चेहरा कैसा है, प्रसन्न वदन है या गुस्से वाला, नाराजगी वाला, क्रोध वाला, कैसा वदन है? कभी हमने सोचा है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो तो प्रसन्न वदन होना ही चाहिए, लेकिन हम कैसे हैं? इसलिए हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं अवश्य, क्योंकि ये जिंदगी की भगवान की देन है। भगवान की देन के लिए हम रिटर्न्स में क्या दें उसको? कुछ भी दे तो भी कम पड़ेगा। अगर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना दें तो ये बहुत रिटर्न, अच्छी रिटर्न गिफ्ट हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मंच पर हमारे साथ बैठकर अपने अमूल्य विचार हमारे साथ शेयर किए। हमारे आदरणीय उषा दीदी जी, जो आप बहुत व्यस्त रहते हैं संस्था के बहुत सारी वर्क्स में, आप अपने समय निकाले हमारे बीच पधारे और अपने अमूल्य वक्तव्य हमारे साथ शेयर किए, जो अपने जिंदगी का अनुभव है। कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, है ना? ऐसे बहुत अच्छा अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया, इसलिए आप सबको, आप सबकी तरफ से दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर उमेश मुंद्रा जी अपना 3 वर्षीय अपना अनुभव भी शेयर किए, उनका भी बहुत बहुत तहदिल से धन्यवाद। और आज के चेयरपर्सन मिस्टर राकेश मेहता जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली एंड चंडीगढ़, आपके अनुभव युक्त और उपयुक्त वक्तव्य के लिए आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे और सभा में स्टेज पर बैठे हुए सभी गणमान्यों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि सवेरे से बैठे और इतनी देर तक अच्छी तरह से सुने और उसका अनुभव पाने की भी इच्छा शक्ति प्रकट की। इसके लिए भगवान आपको शक्ति दे, जो सुना आपने उसको अपने जीवन में अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम 1 मिनट परमात्मा को थैंक्स बोलेंगे, साइलेंस में बैठेंगे और अपने अंदर थोड़ा सोचेंगे कि हमने इतना जो सुना, कहीं ये मिक्स होके कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्या क्या अपनाया? थोड़ा सा 1 मिनट इंटरवर्ट होके अपने आप को चेक करेंगे और उसके बाद आगे के प्रोग्राम सुन के जाएंगे। थैंक यू।
मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।